नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
शुक्रिया, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बधिर प्रतियोगिता में अनुया प्रसाद ने रचा इतिहास, किया स्वर्ण पदक अपने नाम। विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में जीता रजत पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय तीरंदाजों की सराहना की, कहा एशियाई खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगा भावी खिलाड़ियों को प्रेरित। और फिडे शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता में अर्जुन एरिगेसी ने पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला ड्रॉ खेला। शुरुआत करेंगे हम बधिर ओलंपिक से। जापान के टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रांजलि धूमिल ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशवाल ने लगभग 236 अंक के साथ रजत पदक अपने नाम किया। अनुया ने तो आज इतिहास ही रच दिया, 242 अंकों के साथ।
बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, और ये अचानक नहीं हुआ है। पिछले साल हनोवर में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 19 साल की है अभी, और बहुत ही लगातार पिछले 2 साल से जो इनका प्रदर्शन ग्राफ है वो बहुत अच्छा रहा है। और प्रांजलि की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि दोनों भारतीयों का इतना दबदबा था। फाइनल में देखिए 241 पॉइंट समथिंग से उसने स्वर्ण पदक जीता अनुया ने, और 236 से प्रांजलि ने रजत पदक जीता। लेकिन जब क्वालिफाइंग राउंड होता है उसमें प्रांजलि ने इस टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड के कुछ से बेहतर प्रदर्शन किया था। तो आप देखिए कि ये इसमें बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंतर से स्कोर बदल जाता है। तो दोनों ही दावेदार थी स्वर्ण पदक की, और 1-2 फिनिश भारत का होना ये साबित करता है कि कितना दबदबा, जिस तरह से जो नॉर्मल शूटिंग में भारतीयों का दबदबा रहता है, आप देखिए यहां पर भी भारत का दबदबा उसी तरह से रहा।
और अगर हम अभिनव की बात करें तो उन्होंने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 576 के स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन डेफ ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी पहले की थी।
जी बिल्कुल, और पूरा ओवरऑल टूर्नामेंट में हम देखें तो भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और इस तरीके के टूर्नामेंट्स में जो टॉप लेवल पे आप परफॉर्मेंस देते हैं तो लोगों को पता भी चलता है कि हाँ ऐसा भी एक टूर्नामेंट है और इसमें भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो उस तरीके के और खिलाड़ी हैं उनको जरूर प्रेरणा मिलती है कि वो इस खेल को अपनाएं, उसमें तैयारी करें और पदक जीतें।
जी, और निशानेबाजी के खेल से एक और अच्छी खबर आई है। विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के गुरप्रीत सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में उन्हें यूक्रेन के पावलो कोरोस्टाइलोव से हार का सामना करना पड़ा। ये विश्व चैंपियनशिप में गुरप्रीत का दूसरा व्यक्तिगत पदक था। प्रतियोगिता में भारत 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 13 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। गुरप्रीत का ये लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा, दूसरा व्यक्तिगत पदक था, और इससे पहले उन्होंने 2018 में चांगवोन में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में भी रजत पदक अपने नाम
किया था। और बिल्कुल स्वर्ण पदक वो यहाँ जीत सकते थे, वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे, बराबरी पे चल रहा था मुकाबला, लेकिन वो जो टाई ब्रेकर होता है, इनर 10 किसने ज्यादा मारे हैं उसके आधार पर जब निर्धारण होता है उसमें वो थोड़ा सा पिछड़ गए अपने प्रतिद्वंदी से, वरना अभी वो वर्ल्ड चैंपियन होते। और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन उनका भी रहा है और भारतीय खिलाड़ियों का भी इस टूर्नामेंट में रहा है। चाइना और कोरिया बहुत बड़ी महाशक्तियां हैं निशानेबाजी में, और उनके बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा। पदकों की संख्या भी अच्छी है, और जहां अभी ये सारा जितना प्रदर्शन है ये रोड टू एलए को ध्यान में रख के हो रहा है, 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल होने हैं। और उत्तरोत्तर लगातार जो है भारतीय निशानेबाजी खेमे से खिलाड़ियों के, आप देखिए इसमें इलावेल्लिन हो या ऐश्वर्या राय तोमर हो, जितनी हमारी पदक उम्मीदें हैं सबको पदक इसमें मिले हैं। तो ये तैयारियां पुख्ता है और सही दिशा में जा रही है, उसका भी एक सबूत है।
जी, चर्चा करेंगे तीरंदाजी पर। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की। भारत ने प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 10 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये बेहद विशेष उपलब्धि है जो भावी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। 18 साल बाद जो है खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड पुरुषों का स्वर्ण पदक जीता है इस बार।
जी, पूरा टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा, खासतौर पे अंकिता भगत और धीरज बोम्मा देवरा ने जिस तरीके से खेल दिखाया है, और वाकई प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफ की है, मुझे लगता है खिलाड़ियों का हौसला उससे काफी बढ़ेगा कि जब आपका प्रदर्शन एक इतने बड़े मंच पे अच्छा हुआ है और उसके बाद उसको पहचान भी मिल रही है, सराहना भी मिल रही है, तो हौसले जरूर बुलंद होंगे यहाँ खिलाड़ियों के।
जी, तीरंदाजी से चलेंगे अब हम बैडमिंटन कोर्ट की ओर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और सात्विक चिराग की जोड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये प्रतियोगिता कल से 23 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित की जाएगी। अभी हाल ही में जो है इस जोड़ी ने 2रा कांस्य पदक भी विश्व चैंपियनशिप में जीता था, जो हांगकांग सुपर 500 हो या फिर चाइना मास्टर्स 750 की अगर हम बात करें उसमें उपविजेता रही थी ये जोड़ी।
बिल्कुल, ऐसे अगर देखा जाए तो ये पूरा सत्र जो था वो व्यक्तिगत वर्ग में भारत के लिए जरूर निराशाजनक रहा, क्योंकि एक तरफ लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक के बाद से शुरुआती टूर्नामेंटों में जहां भी भाग ले रहे थे शुरुआती दौर में बाहर होते जा रहे थे, लेकिन पिछले 2 टूर्नामेंट में जापान में और हांगकांग में उन्होंने फॉर्म में लौटने के संकेत दिए, और सात्विक और चिराग ने भारत की पूरी उम्मीदों का जिसको कहते हैं बोझ ढोना वो सात्विक और चिराग ने किया है। 2 टूर्नामेंटों में वो भी सुपर 750 और सुपर 500 कैटेगरी के टूर्नामेंटों में वो उपविजेता रहे, लय में लौटने के संकेत दिए हैं। मई में 18 हफ्ते तक नंबर 1 जोड़ी थी युगल में, उसके बाद नीचे खसक के 27वें नंबर पर आ गए थे, लेकिन फिर तीसरे स्थान पर आए हैं। बीच में कुछ ट्रेजेडी भी हुई थी, चिराग के पिता का निधन हो गया था और काफी टूर्नामेंटों में नहीं भी खेल पाए थे, तो उससे सब से उबरने के बाद अब वापसी के साथ इनसे काफी उम्मीदें हैं कि ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, सुपर 500 टूर्नामेंट है, तो यहाँ पर जरूर कम से कम फाइनल तक के सफर की उम्मीद इनसे की जा रही है।
जी, और आपने लक्ष्य सेन का कहा, भी हाल ही में कुमामोतो बैडमिंटन प्रतियोगिता में भी उन्होंने बिल्कुल खेला था और सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अमूमन हम ये देखते हैं कि जो लक्ष्य सेन है वो बड़े खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में वो बाहर करते हैं लेकिन वो पदक जीत नहीं पाते वो फाइनल्स तक।
ये हुआ है पेरिस ओलंपिक के बाद से, तो मुझे लगता है वो जो एक बार वो स्वर्ण पदक के बिल्कुल करीब नजर आ रहे थे पेरिस में और जिस तरीके से उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा, तो काफी मुश्किल होता है इस मुकाम पर जाकर, एक ओलंपिक पदक एकदम करीब आकर आपसे निकल गया तो उसके मानसिक क्या परिणाम होंगे, एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है, उससे उबरने में समय लगता है, लेकिन पिछले 2 टूर्नामेंटों में अगर हम लक्ष्य का प्रदर्शन देखें तो काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, जूनियर चैंपियन रह चुके हैं, विश्व चैंपियनशिप मेडल विनर है और जबरदस्त उनका करियर ग्राफ अब तक का रहा है, तो अभी उम्र भी उनकी कम है, LA में वो दावेदार सकते हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि यहां से वो उस सेटबैक को भुलाकर पेरिस के आगे के लिए फिर से उसी फॉर्म में जिसको कहते हैं ओलंपिक में जरूरी होता है सही समय पर पीक प्रदर्शन करना, सही समय पर फॉर्म में रहना, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि यहां से वो आगे और अच्छा प्रदर्शन करते जाएं।
जी, और उम्मीद करें कि जितने भी खिलाड़ी भारत की इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन करें। बैडमिंटन से चलेंगे शतरंज की ओर। गोवा में फिडे शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता में अर्जुन एरिगेसी ने पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चीन के वेई यी को के साथ ड्रॉ खेला। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
फिडे विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने सोमवार को गोवा के रिजॉर्ट रियो कन्वेंशन सेंटर में खेले गए अपने पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन के वेई यी को काले मोहरों से ड्रॉ पर रोका। यह मुकाबला सिर्फ 31 चालों और 59 मिनट में समाप्त हो गया। इस बार के फिडे विश्व कप में रिकॉर्ड 24 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था जिनमें से सिर्फ अर्जुन ही राउंड 6 तक पहुंच सके। निखिल उपाध्याय फॉर स्पोर्ट्स कैंप फ्रॉम पणजी।
24 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और सिर्फ एक से अब उम्मीदें बची हैं।
206 टोटल खिलाड़ी थे जिसमें 24 भारतीय थे, और पिछले दौर में पी हरिकृष्णा के बाहर होने के बाद से अर्जुन एरिगेसी ही बचे हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ आज जिस तरीके से प्रदर्शन किया, 31 चालों और 1 घंटे से 1 मिनट कम में ये बाजी ड्रॉ पर रही, और अगर अगला मुकाबला वो जीत जाते हैं तो न सिर्फ सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे बल्कि वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लेंगे, जहां वो पिछली बार चूक गए थे। आपको याद होगा कि 2024 में आर प्रज्ञानानंदा, विदित गुजराती और डी गुकेश ने खेला था, और डी गुकेश ने तो जीता भी था कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, और वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे, डिंग लिरेन को चुनौती दी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ अर्जुन एरिगेसी के पास, और जिस तरह से भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की ये पौध है उत्तरोत्तर अच्छा प्रदर्शन करके अपना परचम लहरा रही है, तो यहाँ जरूर हम ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि भारत में हो रहा है और यहाँ से कम एक कैंडिडेट्स कोटा तो भारतीय खिलाड़ी को मिलना ही चाहिए, तो अर्जुन एरिगेसी पर पूरी नजरें लगी होंगी कि अगला मुकाबला वो किस तरीके से खेलते हैं।
जी, सिक्किम में 41वें गवर्नर्स गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में सिक्किम ड्रैगन्स एफसी ने तिब्बती राष्ट्रीय फुटबॉल संघ को हराया। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
सिक्किम का खेलकूद मंत्री राजू बसनेट ने कल यानी 16 नवंबर 41वां गवर्नर गोल्ड कप आंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का उद्घाटन किया है। सिक्किम का राजधानी गैंगटोक में अवस्थित पालजो स्टेडियम में ये मैचेस अनुष्ठित हो रहे हैं। आज यानी टूर्नामेंट का दूसरा दिन दो मैचेस हम लोग देखे है। पहली मैच में सिक्किम ड्रैगन फुटबॉल क्लब ने तिब्बतन नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन को 4-0 गोल से हरा दिया है। पहली मैच में सिक्किम ड्रैगन का रॉबिन नेपाल मैन ऑफ द मैच घोषित कर दिए गए हैं। अगली बार सिक्किम ड्रैगन आई लीग के टीम निरोका एफसी जो मणिपुर से है उनके साथ प्रतिद्वंदिता करेंगे 19 नवंबर। दूसरा मैच में सर्विसेज 11 ने सिक्किम आक्रमण स्पोर्टिंग क्लब को 2-0 गोल से हरा दिया है। दूसरा मैच के अभिषेक पवार मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए हैं। ये टूर्नामेंट 29 नवंबर तक चलेगी पालजो स्टेडियम गैंगटोक में। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी गैंगटोक से स्पोर्ट्स कैन के लिए।
अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। आगामी आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंकाई दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा को हेड कोच के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने टीम में राहुल द्रविड़ की जगह ली है। संगकारा क्रिकेट निदेशक के रूप में भी अपनी भूमिका जारी रखेंगे। इस फ्रेंचाइजी में विक्रम राठौर मुख्य सहायक कोच और शेन बॉन्ड गेंदबाजी कोच बने रहेंगे। पहले भी इस टीम के साथ जुड़े रहे हैं कुमार संगकारा, और उनके 2022 के आईपीएल में देखिए तो राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल्स भी खेला था। कितना अहम होगा?
बहुत ही अहम होगा, क्योंकि आप लंबे समय से टीम के साथ जुड़े हैं। जब राहुल द्रविड़ सेटअप में थे तब भी कुमार संगकारा टीम के साथ जुड़े हुए थे, तो एक तरह से जो कोर टीम है वो आपने ही तैयार की है, और जब ऑक्शन हुई थी तो आपने अपनी पसंद के खिलाड़ी उसमें चुने हैं, जिनको तैयार करने के लिए पहले से ही लग रहा था कि जो कुमार संगकारा को बरकरार रखा जाएगा, और उसी के अनुरूप राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी ने फैसला लिया है। और यहां जरूर निगाहें टिकी होंगी कि जो प्रदर्शन 2022 में किया था उसको एक बार फिर ये पहले सत्र की चैंपियन टीम है राजस्थान रॉयल्स उसको फिर दोहरा सके।
और अब तो इस टीम में हरफन मौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को भी जोड़ लिया गया। संजू सैमसन ट्रेड होकर चेन्नई में गया, तो उनके आने से और टीम कितनी मजबूत होगी?
देखिए, चेन्नई टीम को एक शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की कमी महसूस हो रही थी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी के बाद एक अच्छे कप्तान की भी जो टीम को सफलताओं तक ले जा सके, तो संजू सैमसन में कहीं उनको भावी कप्तान नजर आता होगा। और रविंद्र जडेजा जो जिसको कहते हैं कैरियर के ट्वाइलाइट पर है, आखिरी पड़ाव पर है, तो उन्हें भी लगा होगा कि एक ब्रेक वो ले सकते हैं। लंबे समय से वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहे हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी की तरफ से जब ऑफिशियल्स ने बयान दिया था तो उन्होंने यही कहा था कि ये म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है, आपसी सहमति से हुआ है, और जडेजा खुद स्वीकार करते थे कि अब इस पड़ाव पर वो ब्रेक लेने की स्थिति में है। तो देखते हैं कि नई फ्रेंचाइजी के साथ, क्योंकि पिछले सत्र में चेन्नई का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा, तो थोड़ा बहुत कोर टीम तो नहीं उन्होंने बदली है, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव लाजमी थे।
जी, और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
शुक्रिया।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।